ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो श्रीमद् भागवतम अजामिल के जीवन का इतिहास स्कंद 6 अध्याय 1 और आज का जो श्लोक है वो है श्लोक नंबर 18। तो मेरे पीछे दोहराइएगा, प्रायश्चित्तानि चीर्णानि नारायण परां मुखां न निष्पुनन्ति राजेन्द्र सुरा कुंभम इवाप अपगा। प्रायश्चित्तानि, प्रायश्चित की विधियां, चीर्णानि अच्छे ढंग से संपन्न, नारायण परांग मुखम अभक्त न निष्पुनन्ति पवित्र नहीं कर सकती, राजेंद्र हे राजन, सुरा कुंभम शराब से भरा पात्र, इव सदृश आपगा नदियों का जल। अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की, हे राजन, जिस तरह सुरा से सने हुए पात्र को अनेक नदियों के जल से धोने पर भी शुद्ध नहीं किया जा सकता, उसी तरह अभक्तों को प्रायश्चित की विधियों से शुद्ध नहीं बनाया जा सकता, भले ही वे उन्हें बहुत अच्छी तरह से संपन्न क्यों ना करें। एक दफा मेरे पीछे दोहरा दीजिए, हे राजन, जिस तरह सुरा से सने हुए पात्र को अनेक नदियों के जल से धोने पर भी शुद्ध नहीं किया जा सकता, उसी तरह अभक्तों को प्रायश्चित की विधियों से शुद्ध नहीं बनाया जा सकता, भले ही वे उन्हें बहुत अच्छी तरह से संपन्न क्यों ना करें। तात्पर्य, प्रायश्चित की विधियों से लाभ उठाने के लिए मनुष्य को थोड़ा बहुत निष्ठावान तो होना ही चाहिए, अन्यथा उसके शुद्ध होने की संभावना नहीं रहती। इस श्लोक में स्पष्ट है कि वे लोग जो कर्म कांड तथा ज्ञान कांड का लाभ उठाते हैं किंतु किंचित भी भक्ति नहीं करते, इन अन्य मार्गों का अनुसरण करने मात्र से शुद्ध नहीं किए जा सकते। प्रायश्चित्तानि शब्द कर्मकांड तथा ज्ञानकांड दोनों को ही सूचित करने के लिए बहुवचन में प्रयुक्त हुआ है, इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, कर्मकांड ज्ञानकांड केवल विशेष अभांड। इस तरह वे कर्मकांड तथा ज्ञानकांड के मार्गों की उपमा विष के पात्रों से देते हैं। सुरा तथा विष एक ही कोटि में आते हैं। श्रीमद् भागवत के इस श्लोक के अनुसार जिस व्यक्ति ने भक्ति मार्ग के बारे में काफी सुन रखा है किंतु जो उसमें अनुरक्त नहीं है, जो कृष्णा भावना भावित नहीं है, वह सुराग के पात्र के तुल्य है। ऐसा व्यक्ति भक्ति के रंच मात्र स्पर्श के बिना शुद्ध नहीं किया जा सकता। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्ठं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेयं श्रीगुरो श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाक्ष च श्रीरूपं सागरजातां सहगण रघुनाथवितं तं सजीवं सावदेतं सावदूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताक्ष। नमोम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। शिल प्रभुपाद की जय। समस्त गुरु परंपरा की जय। श्री रूप सनातना भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामाचार्य शिल ठाकुर की जय। पंच तत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्शक्तिकम। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्या नामने गौरतुषे नमः। आराधयो भगवान ब्रजेशतनयस्तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणमामलम प्रेमापमर्थो महान श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतम इदं तत्रादरो न परा। नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्रह्मण हिताय च जगतिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिं परम। ओम नीलांचला निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् गिरिपात अधम वंदे परमानंद माधवं श्रीगुरुदीन तारणं। वंशाकल्पतरुभिश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रश्चित्तानि चीर्णानि नारायण परांगमुखम न निष्पुनन्ति राजेन्द्र सुराग कुंभम इव आपगा। हे राजन, जिस तरह सुराग से सने हुए पात्र को अनेक नदियों के जल से धोने पर भी शुद्ध नहीं किया जा सकता, उसी तरह अभक्तों को प्रायश्चित की विधियों से शुद्ध नहीं बनाया जा सकता, भले ही वे उन्हें बहुत अच्छी तरह से संपन्न क्यों ना करें। तो जैसा कि आप जानते हैं, इस अध्याय का नाम है अजामिल के जीवन का इतिहास। तो अजामिल की कथा अभी शुरू होगी दो तीन श्लोकों के बाद। तो अभी यहाँ इस विशेष इस श्लोक में प्रभुपाद कह रहे हैं कि जब तक व्यक्ति भक्ति के संपर्क में नहीं आएगा, तब तक उसके द्वारा किए गए प्रायश्चितों से उसको शुद्ध नहीं बनाया जा सकता। यानी जो व्यक्ति भक्त नहीं है उसको शुद्ध नहीं बनाया जा सकता। आज के श्लोक का जो निचोड़ है वो ये है। तो इस जगत के अलावा भी एक जगत है, दो जगत हैं कि नहीं हमें पहले मालूम नहीं था। पहले हमको श्रीला प्रभुपाद के संपर्क में आने से पहले, श्रीला प्रभुपाद के संपर्क में मतलब इस्कॉन के संपर्क में आने से पहले, इस्कॉन इज द पर्सनोफाइड श्रीला प्रभुपाद, इस्कॉन के संपर्क में आना मतलब प्रभुपाद के संपर्क में आप आ गए। तो उनके संपर्क में आने से पहले हमको पता नहीं था कि जगत भी दो हैं, एक भौतिक जगत और एक आध्यात्मिक जगत। और भक्ति में आने से पहले जब हम भी भक्त नहीं थे, ऐसा समय भी था जब हम भक्ति भी नहीं थी हमारे अंदर, तो एक गाना गुनगुनाया करते थे। बता देते हैं आपको क्या गाते थे। जीना यहां मरना यहां, इसके सिवा जाना कहां। तो ये गाता ही रहता था, जीना यहां मरना यहां, इसके सिवा जाना कहां। अब जब हम पहली बार मंदिर में पहुंचे और प्रभुपाद की पुस्तकों का अध्ययन किया तो हमारा दिमाग चकराया। तो प्रभुपाद ने बताया कि ऐसा नहीं है कि इसके सिवा कहीं नहीं जा सकते, इस जगत के अलावा भी एक आध्यात्मिक जगत है। और भगवान ने भगवत गीता में 15वें अध्याय में बताया है, द्वामिमो पुरुषो लोके शर अक्षरा एवच शरा सर्वाणि भूतानि कूटस्थो उच्चते। जीव दो प्रकार के होते हैं, जगत भी दो है और जीव भी। तो जो इस भौतिक जगत में रहते हैं वो शरा सर्वाणि सारे के सारे मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं, और जो आध्यात्मिक जगत में जीव हैं वो अक्षर हैं, उनकी मृत्यु नहीं होती। तो प्रभुपाद ने बताया कि आप उस जगत में जा सकते हो, तो ये मत बोलो कि जीना यहां मरना यहां, इसके सिवा जाना कहां। उसके बाद में हमने वो बोलना बंद कर दिया और समझने का प्रयास चालू किया कि वो जगत अगर है तो वहां कैसे जाया जा सकता है। प्रभुपाद की वाणी ने मन और मस्तिष्क में क्रांति ला दी, नहीं जानते। और संसार में वास्तव में 99.9% लोग नहीं जानते कि इस जगत के अलावा भी कोई और जगत है जहां जाया जा सकता है, नहीं जानते। दो बातों को नहीं जानते, हम वृंदावन में बैठे हैं, हम भगवान के निकट हैं, हम भगवान के धाम में बैठे हैं। साधारण जीव नहीं जानता कि भगवान कौन है, हु इज सुप्रीम लॉर्ड, नहीं जानते। बहुत दुख का विषय है। और वो नहीं जानते कि इस जगत के अलावा भी कोई जगत है जहां जाया जा सकता है, लेकिन वहां जाने की विधि क्या है, जो आज का श्लोक है, उसके लिए शुद्ध होना पड़ेगा। और प्रभुपाद कहते हैं अभक्त को जो है शुद्ध नहीं किया जा सकता जब तक किंचित भी। प्रभुपाद लिखते हैं भक्ति के रंच मात्र संपर्क में आने से उसकी संभावना हो जाएगी। लास्ट में लिखते हैं ऐसा व्यक्ति भक्ति के रंच मात्र मतलब बहुत थोड़ी भक्ति का भी अगर उसने स्पर्श कर लिया तो उसको शुद्ध होने की संभावना उसकी हो जाती है, लेकिन अगर वो बिल्कुल भक्त नहीं है तो उसकी संभावना नहीं है। देखिए जगत दो है, एक भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत, जीव दो है, एक शर और एक अक्षर, और इस संसार में लोग भी दो हैं, कौन से, एक भक्त और एक अभक्त। अभी कुछ समय पहले, कुछ ही दिन पहले हिंदुस्तान ने पड़ोसी देश के ऊपर एयर स्ट्राइक किया, और वहां के जो उग्रवादों के जो अड्डे थे उनको ध्वस्त किया, और उसमें हमारे एक नौजवान ने बड़ी भूमिका निभाई, आप शायद जानते होंगे, अभिनंदन ने वहां जाकर के जो है अटैक किया, और अटैक करने के बाद जिस विमान में वो था मिग 21 विमान ध्वस्त हो गया, और वो भी उस पड़ोसी देश में पकड़ा गया, आप जानते होंगे। पूरे देश की निगाहें अभिनंदन के ऊपर लगी हुई थी कि ये जो है वहां से किस तरीके से अपने देश में लौटे। भारत सरकार से लेकर के हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों की निगाह अभिनंदन के ऊपर लगी हुई थी कि किस तरीके से वो अपने मुल्क में आ जाए। अभिनंदन सब देशवासियों की प्रार्थना से, सरकार के प्रयास से अपने देश में लौट आया, और सब लोग बड़े प्रसन्न हो गए। क्यों प्रसन्न हो गए? 130 करोड़ लोग क्यों प्रसन्न हुए? क्यों? कि वो मौत के मुंह से निकल के अपने घर आ गया। अब थोड़ा समझने वाली बात यह है कि क्या वास्तव में ही वो मौत के मुंह से बाहर निकल आया? हम समझते हैं कि मौत के मुंह से बाहर निकल आया और अपने घर आ गया। न तो वो मौत के मुंह से बाहर निकला और न अपने घर आया। ये समझने की बात है। थोड़ी देर की प्रसन्नता है कि हम अपने घर में आ गए, लेकिन कौन सा घर है? ये तो हमारा घर नहीं है। और मृत्यु से अगर हमको सरकार ने बचाया है तो किसने कितने समय के लिए बचाया है? मृत्यु से यहां की भारत सरकार नहीं बचा सकती, केवल जुगल सरकार बचा सकती है, केवल गौर निताय बचा सकते हैं, केवल कृष्ण बलराम बचा सकते हैं, केवल राधा श्याम सुंदर बचा सकते हैं, और तो कोई मृत्यु से बचाने वाला है नहीं। हमको लगता है कि हम मृत्यु से बच गए। तो जिस दिन हमको ये बात समझ में आ जाती है तो हमारी सोच बदल जाती है, हमारी सोच बदल जाती है। नहीं तो संसार के साथ हम भी तालियां बजाते हैं, हाँ अभिनंदन आ गया आ गया, अच्छी बात है आना, लेकिन इस सच्चाई को कितने लोग समझने का प्रयास करते हैं? कितने लोग समझने का प्रयास करते हैं? तो अभी हम अपने विषय पे आते हैं। यहां पर जो आज का श्लोक है उसमें बताया गया है कि अभक्तों को प्रायश्चित की विधियों से शुद्ध नहीं बनाया जा सकता। मतलब यह है कि अगर आप कर्म कांड में लगे हुए हैं तो भी आपको भक्त नहीं माना जाएगा, अगर आप ज्ञान कांड में लगे हुए हैं तो भी आपको भक्त नहीं माना जाएगा। तो भक्त किसको माना जाएगा? कौन भक्त है और कौन भक्त नहीं है? तो भगवान भगवद गीता में थोड़ा बताते हैं कि कौन अभक्त है। नमाम दुष्कितु नो मूढ़ा प्रवदन्ते नराधमा मायाया अप्रज्ञाना आस्वरम भावम आश्रिता। ये चार प्रकार के लोग भगवान कहते हैं मेरी शरण में नहीं आते। कौन कौन? जो मूर्ख व्यक्ति है, नमाम दुष्कितु नो मूढ़ा, भगवान उसको दुष्ट बता रहे हैं, मूर्ख व्यक्ति, जिसका उदाहरण प्रभुपाद देते हैं गधे का, जैसे गधा होता है ना, सारा दिन वजन ही ढोना है और उसको उससे आगे का कुछ अता पता नहीं है, तो ऐसा मूर्ख व्यक्ति भगवान कहते हैं मेरी शरण में नहीं आता। और जो नराधम है, जिसको शरीर मनुष्य का मिल गया है लेकिन कार्य उसके कैसे हैं, पशुओं के समान है, नराधम नरों में अधम। और माया या अप्रज्ञाना, जिसका ज्ञान माया ने हर लिया है, वो भगवान की शरण में नहीं जाएगा, कहीं भी चला जाएगा, किसी की भी शरण ले लेगा, लेकिन भगवान श्री राधा श्याम सुंदर की, कृष्ण बलराम की, गौ निताय की, सीताराम की, श्री लक्ष्मी नारायण की, यानी विष्णु तत्व की शरण नहीं ग्रहण करेगा। और आसुरम भावम आश्रिता, जो आसुरी स्वभाव का व्यक्ति है वो भी नहीं आएगा। तो जब तक भगवान की शरण में नहीं जाया जाएगा तब तक जो है हमारा उद्धार होना मुश्किल है। और भगवान कहते हैं चार प्रकार के लोग जो मेरी शरण में आते हैं वो भी आपको मालूम ही है। और उसमें भगवान फिर आगे बताते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतुन अर्जुना आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भर्तृषभा। ये चार प्रकार के लोग भगवान कहते हैं मेरी शरण में आते हैं, तेषाम ज्ञानी नित्य युक्ता। और इसमें जो ज्ञानी है भगवान कहते हैं मेरे को वो सबसे अधिक प्रिय है। और भगवान के संपर्क में आना, भगवान के संपर्क में आकर के भक्ति को शुरू करना, ये बहुत ही दुर्लभ विषय है। ऐसा लगता है कि हम मंदिर में हैं, हम वृंदावन में रह रहे हैं, हमें बहुत सारे लोग यहाँ भक्ति करते हुए दिखाई देते हैं, बहुत सारे सब लोगों के हाथ में जप माला होती है, गले में कंठी माला होती है, लेकिन आप विश्व में जाकर के देखिए आपकी आंखें सूख जाएंगी भक्त को देखने के लिए। गले में कंठी माला देखने के लिए आंखें तरस जाएंगी, दिखाई नहीं देगा। आप विश्व में जाकर के देखो, हम यहाँ बड़े साधारण रूप से भक्तों को ले लेते हैं, लेकिन भक्त का मिलना जो है भगवान स्वयं कहते हैं बड़ा ही दुर्लभ है। बहुनाम जन्नाम अंते ज्ञान वान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। बहुत दुर्लभ है, अनेक जन्म बीत जाने के बाद जाकर के पता लगता है कि कौन भगवान है। इतना आसान नहीं है पता लगना। तो जब यही नहीं पता कि भगवान कौन है, तो फिर भक्ति जो भी सो कॉल्ड हम भक्ति करते हैं वो भक्ति नहीं है ना, वो भक्ति नहीं है। और जब भक्ति नहीं है तो फिर उसके शुद्ध होने की संभावना नहीं है। शुद्ध होना क्यों है, शुद्ध क्यों होना है ना, यहां पर जो श्लोक में है कि जिस तरह सुरा से सने हुए वस पात्र को अनेक नदियों के जल से धोने पर भी शुद्ध नहीं किया जा सकता, उसी तरह भक्तों को भी प्रायश्चित की विधियों से शुद्ध नहीं बनाया जा सकता। तो कोई कह सकता है भाई क्यों शुद्ध होना है, जैसे हम ठीक है ना, शुद्ध क्यों होना है और किसको शुद्ध करना है। अब अभक्त है तो अभक्त के शरीर को शुद्ध करना है, किसको शुद्ध करना है। आत्मा तो शुद्ध है, शुद्ध किसको करना है, मन को। और मन से भी बारीक जो अंदर है मन के साथ चित्त जुड़ा हुआ है, चित्त, तो चित्त को शुद्ध करना है। और चित्त को शुद्ध करने से क्या होगा, क्यों शुद्ध करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक शुद्ध नहीं होगा चित्त तब तक आप अपने घर नहीं लौट पाओगे। अभिनंदन की तरह बस जगह बदल जाएगी, मौत के मुख से नहीं निकल सकते। अगर मौत के मुख से निकलना है तो आपको प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा, प्रभुपाद की वाणी को समझना पड़ेगा। तो अभक्त को जो शुद्ध करने की बात है तो वो अभक्त के शरीर को शुद्ध करने की बात नहीं है, उसके चित्त को शुद्ध करने की बात है। तो इसीलिए महाप्रभु ने शिष्टाश्रम के पहले श्लोक में ही गा दिया, क्या, चेतो दर्पण मार्जनम भव महाधावागनि निर्वापरम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम्बुदे वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामित स्वादनम सर्वात्मानाश्नापनम परम विजयते श्रीकृष्णा संकीर्तनम। तो चेतो दर्पण, चित्त का शुद्ध करना, चित्त को शुद्ध क्यों करना है, इसीलिए शुद्ध करना है क्योंकि बगैर शुद्ध किए आप वापस घर नहीं लौट सकते। क्यों घर नहीं लौट सकते, मान लीजिए जिस जगत की हमने आपसे बात करी आध्यात्मिक जगत, आध्यात्मिक जगत मान लीजिए शुद्ध सोना है, शुद्ध सोना 24 कैरेट का शुद्ध सोने की खान क्या है, आध्यात्मिक जगत। और वास्तव में हम भी सोना है, लेकिन हमारे ऊपर मैल चढ़ गया। कौन सा मैल चढ़ गया? तीन गुणों का मैल चढ़ गया, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। अब सोना तो है हम, ईश्वर परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम, जो सच्चिदानंद हैं, भगवान कहते हैं तुम तो मेरे हो, भगवान कहते हैं तुम तो मेरे हो। वो सच्चिदानंद भगवान जो 24 कैरेट सोने की खान है, वो भगवान कहते हैं तुम मेरे हो। ममे वांछो जीव लोके जीव भूता सनातना मन षष्ठानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कृषति, मेरे अंश हो, यानी सोने की खान भगवान है 24 कैरेट के, हम भी 24 कैरेट के हैं, लेकिन वो सोने की खान में से कण निकल करके इस भौतिक जगत में आ गया है और तीन गुणों से वो मैला हो गया है, इसीलिए उसको शुद्ध करना है। जब तक 24 कैरेट का आप कण शुद्ध नहीं हो जाएगा, तब तक वापस सोने की खान में जाने की उसकी कोई संभावना नहीं है। प्योरिटी चाहिए ना, 24 कैरेट का बनना ही पड़ेगा हमारे को, और 24 कैरेट का जब बनना पड़ेगा उसके लिए आग में तपना पड़ेगा। सोने को शुद्ध करने का क्या है रास्ता, कैसे किया जाता है शुद्ध? उसको आग में तपाया जाता है। आग में बगैर तपाए हमारा काम होने वाला नहीं है, अगर हमें अपने घर वापस जाना है। अब इच्छा है अगर हमारी घर वापसी की, तभी हम जाएंगे ना। देखिए, एक व्यक्ति अपने घर लौटता है सांसारिक दृष्टि से, तो 130 करोड़ लोग प्रसन्न हो जाते हैं उसको देख करके, वो अपने घर लौट आया। और जब भौतिक जगत से एक जीवात्मा ठाकुर जी के घर अपने घर पहुंचता है, तो समझते हैं वहां कितने भक्त, कितने ठाकुर जी के भक्त, और स्वयं ठाकुर जी कहते हैं देख करके जीवात्मा को अचेत हो जाते हैं प्रसन्नता के मारे कि तू वापस आ गया, अपने घर लौट आया। बहुत उत्साह होता है, बहुत जलसा होता है एक जीवात्मा अगर भौतिक जगत से अपने घर पहुंचता है। जो अपने घर नहीं पहुंचा वास्तव में, उसके लिए 130 करोड़ लोग तालियां बजा रहे हैं। जब वास्तव में अपने घर पहुंचेंगे तो वहां पर क्या जलसा होगा, क्या उत्साह होगा। इसीलिए हम लोगों को थोड़ा गहराई में जाना होगा कि ये जो जीवन हमको प्राप्त है, इससे हम वहाँ जा सकते हैं, अपना शुद्धिकरण हो सकता है और हम अपने जो लक्ष्य को है उसको प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम भक्ति कर रहे हैं और हमारी ठाकुर जी से प्रीति नहीं बढ़ रही है, तो बताया गया है ये केवल श्रम एव ही केवलम। तो हमारे को क्या करना है, ठाकुर जी की भक्ति करनी है। भगवान कहते हैं मेरे भक्त बनो, लेकिन थोड़ा सा हमें और आगे चलना पड़ेगा। भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मेरी शरण लो। भगवान ने यह भी बताया कि चार प्रकार के लोग मेरी शरण लेते हैं, वो मेरे भक्त हैं, मुझे बहुत प्रिया है। लेकिन भगवान साथ साथ ये भी बता देते हैं, क्या बता देते हैं, ये मैं भक्त जना पार्था ना मे भक्तास्ते मे जना मद भक्ता नाम चये भक्ता ते मे भक्तमा बता, जो मेरा भक्त है वास्तव में वो मेरा भक्ति नहीं है। सारी बात कह करके भगवान ने मेरे भक्त बनो, मेरे भक्त बनो, मेरी शरण लो, मेरे पास आओ, मेरी पूजा करो, मन मना भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्करु माम अवश्य सत्यम ते प्रतिजानी प्रियोसी में। लेकिन भगवान आदि पुराण में ये श्लोक कोट करते हैं, चैतन्य चरितामृत में इसका उल्लेख आता है कि भगवान कहते हैं जो मेरा भक्त है, जो मेरा सीधी भक्ति करता है, डायरेक्ट कनेक्शन जो मेरे से जोड़ता है, वास्तव में वो मेरा भक्त है ही नहीं। अब सारा किया कराया हमारा जो है बेकार। अब क्या करना पड़ेगा? ठाकुर जी बड़े प्रयास से हमने कनेक्शन जोड़ा था आपसे, आपने तो ये कहकर हमारे सारे प्रयासों पे पानी फेर दिया। अब भगवान कहते हैं मेरे भक्तों के साथ जुड़ो, तब तुम मेरे उत्तम भक्त कहलाओगे। इसी बात को शिव जी भी कहते हैं पार्वती जी से, क्या कहते हैं? आराधना नाम सर्वेशम विष्णु आराधना परम, विष्णोर आराधनम आराधनम परम, तस्मात परम तिर तस्मात परातरम देवी तदीय नाम समर्चनम। के ऐसे तो विष्णु की आराधना करना सबसे उत्तम है, लेकिन उससे भी उत्तम क्या है? विष्णु के भक्तों का आश्रय लेना, तदीय नाम समर्चनम। तो विष्णु के जो भक्त हैं उनका जब हम आश्रय लेते हैं तब वास्तव में हम आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए सारी बातों को समझना है, भगवान से अपने संबंध को समझना है, भगवान से सीधा संबंध न जोड़ करके भगवान के भक्तों का आश्रय लेना है, अपने आप को शुद्ध करने की प्रक्रिया से जोड़ना है। कैसे हमको शुद्ध होना है, कैसे हम अपने घर जाएंगे, हमको गंभीर बन करके चलना पड़ेगा। तो अभी हम इस श्लोक को यहीं विश्राम देते हैं। आज तीन प्रमुख तिरोभाव दिवस है जिसके ऊपर हम थोड़ा थोड़ा बोलने का प्रयास करेंगे। एक तो है रसिकानंद प्रभु का तिरुभाव दिवस है, और दूसरा जो है जगन्नाथ दास बाबा जी, इनका तिरुभाव दिवस है, और तीसरा जो है श्रील प्रभुपाद के बहुत ही प्रिय डिसाइपल शिष्य हिज होलीनेस तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी का भी तिरुभाव दिवस है। उसके लिए आज कार्यक्रम भी रखे गए हैं, तो आप उस कार्यक्रम में आप भाग ले सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं, रसिकानंद प्रभु जी ये कौन है और इनका जीवन चरित्र थोड़ा थोड़ा आपको हम बताते जाएंगे। तो रसिकानंद प्रभु जो हैं, इनका जन्म हुआ है सन 1647 में, कार्तिक शुक्ल के दिन इनका जन्म हुआ है, और ये एक राजा के बेटे थे। इनके पिता का नाम था राजा अच्युतानंद और माता का नाम था भवानी देवी, और आप एक राजकुमार थे, लेकिन संसार में इनका मन नहीं लगता था, ये भी अपने घर जाना चाहते थे। सब कुछ था, राजपाट था, राजा के बेटे थे, लेकिन इनको मालूम था कि मेरा राजा कहाँ है, तो वो उसी के प्रयास में थे। तो इस प्रकार से इन्होंने श्यामानंद प्रभु की शरण ग्रहण की। श्यामानंद प्रभु का नाम सुना आपने? श्यामानंद प्रभु जिनको वृंदावन में राधा रानी के दर्शन हुए थे और उनको पायल या पजेब क्या प्राप्त हुई थी, वो उनके गुरु थे। और इनकी भक्ति निष्ठा, इसमें लिखा है आपकी जितनी निष्ठा प्रीति श्री हरि में थी उससे अधिक निष्ठा हरि भक्तों में थी। देखिए वही बात आ गई, भगवान में जितनी भक्ति निष्ठा थी उससे अधिक निष्ठा हरि के भक्तों में थी। और ये क्या करते थे, इनके इनका ये विचार था कि जिस प्रकार से एक गर्भवती महिला के उदर में एक शिशु होता है, और गर्भवती महिला को जब आप कुछ खिलाते हैं तो वो आहार जो है शिशु के पास स्वयं पहुंच जाता है, उसी प्रकार भक्तों की सेवा करने से, भक्तों की सेवा करने से जो उनको खिलाया जाता है, आहार खिलाया जाता है, वो भक्तों के हृदय में स्वयं श्याम सुंदर वास करते हैं और वो आहार स्वयं श्याम सुंदर प्राप्त कर लेते हैं। ऐसी निष्ठा थी उनकी भक्तों और संतों के बारे में। और वो क्या करते थे, प्रतिदिन संतों के चरणामृत को इकट्ठा करते थे और उसको घड़े में रखते थे और उस घड़े की पूजा अर्चना करते थे और रोज उसका सेवन करते थे। भक्तों के चरणामृत का सेवन करना उनका प्रतिदिन का नियम था। तो उनके जो सेवक थे वो इस कार्य को किया करते थे। तो एक दिन जब ये कार्य हो रहा था और उन्होंने जब चरणामृत पिया तो उनको चरणामृत पीने में आनंद नहीं आया। तो उन्होंने कहा भाई क्या बात है, आज चरणामृत पीने में आनंद नहीं आ रहा। उन्होंने सेवक से पूछा तो सेवक थोड़ा घबराया और उन्होंने कहा कि आज मैं एक भक्त का चरणामृत नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? बोले उसको पैर में कोढ़ था, कोढ़, तो उस वजह से हमने उसका चरणामृत नहीं लिया। तो रसिकानंद प्रभु ने कहा नहीं, ये ऐसा नहीं होगा, उसका भी चरणामृत लेकर के आओ। और उसका चरणामृत लेकर के उन्होंने सेवन किया और स्वयं ठाकुर जी ने उनकी परीक्षा ली थी। और इस प्रकार वो ये चरणामृत जो है वहां पर सबको देते थे और सबके रोगों को भी उससे दूर हो जाता था। एक बच्चे को किसी नाग ने काट लिया था, वो मरणासन था और चरणामृत पिला करके संतों के चरणामृत से उन्होंने उसके उस नागपाश का जो भी जहर था, विष था, उसको निकाल दिया था। और इसके अलावा जो श्यामानंद जी थे, एक दफा वहाँ एक जगह है वानपुर, वानपुर में कुछ जमीन थी, उस जमीन से मंदिर का जो भी सेवा होती थी या मंदिर को चलाने के लिए वानपुर की जमीन से जो धन उपार्जन होता था तो वो चलता था। तो एक दफा वहाँ का जो शासक था, मुस्लिम शासक, उसने उस जमीन को हड़प लिया। तो श्यामानंद प्रभु जो इनके गुरु थे, उस गुरु ने जो है उन्होंने इनको संदेश भेजा कि तुम जितना शीघ्र अति शीघ्र हो सके मेरे पास चले आओ। तो उस वक़्त ये भोजन कर रहे थे, कौन? रसिकानंद प्रभु। तो भोजन करते करते जब इनको ये संदेश मिला कि मेरे को तुरंत वहाँ बुलाया है, तो उन्होंने आचमन भी नहीं किया, जैसे प्रसाद पा रहे थे वैसे ही तुरंत अपने गुरु के पास चले गए और उनसे आज्ञा लेकर के वहाँ पर जाकर के उन्होंने हाथ मुँह वगैरह धोया और उनसे पूछा कि मेरे को किस लिए बुलाया है। तो इस प्रकार उन्होंने बताया कि नवाब हुसैन जो शासक है, आप उसके पास जाओ और वो जमीन उन्होंने हमारी हथिया ली है, वो जो है वैष्णव के प्रति बहुत खिलाफ रहता है और इस तरीके से जो है आपको वहाँ जाना होगा। वो वहाँ गए वानपुर में, तो वहाँ पर इनके बहुत सारे शिष्य थे जो नवाब हुसैन के यहाँ नौकरी करते थे। तो जब ये वहाँ गए तो इनके सारे शिष्य जो है इनकी सेवा में लग गए। नवाब हुसैन शासक ने कहा क्या बात है, मेरे पास दरबार में कोई लोग दिखाई नहीं देते, कहाँ चले गए हैं? तो पता लगा कि ये तो रसिकानंद प्रभु आए हैं और सब ये उनके शिष्य हैं, उनके पास गए हैं। तो उनके को बड़ा गुस्सा आया कि भाई ये क्या है। और उन्होंने कहा कि बुला के लाओ उसको, रसिकानंद को, मैं देखता हूँ कौन है ये। जब वो बुलाने के लिए उसको भेजा तो रास्ते में ही उन्होंने एक मतवाला हाथी को छोड़ दिया कि इसको रास्ते में ही समाप्त कर दे। और शिष्यों ने इसको कहा कि आप मत जाओ, वो हाथी आपको जो है वो कर देगा, समाप्त कर देगा। लेकिन इन्होंने हाथी को भी भक्त बना दिया। रसिकानंद प्रभु की भक्ति ऐसी थी, हाथी को भी भक्त बना दिया। और जो नवाब हुसैन शाह था वो भी इनकी भक्ति को देख करके, इनके आचरण को देख करके भक्त बन गया। तो अभी इसको हम रसिकानंद प्रभु जी का जो है वो आज तिरुभाव दिवस है और आप जो है उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। तो वो बहुत ही इसमें हम ज़्यादा आगे अभी नहीं बढ़ेंगे क्योंकि समय का हमारे पास अभाव है, कथाएं तो इसमें बहुत हैं। तो अभी तो रसिकानंद प्रभु जी का जो है हमने आपको बताया था 1647 में प्राकट्य हुआ था। अब इसके बाद हम आते हैं जगन्नाथ दास बाबा जी। जगन्नाथ दास बाबा जी जो है आपने देखा होगा हमारी जो परंपरा है उसमें जगन्नाथ दास बाबा जी सबसे आखिर में आपको दिखाई देते हैं। तो जगन्नाथ दास बाबा जी कौन थे और किस प्रकार से इनका जीवन चरित्र था, क्या था, उसके बारे में हम थोड़ा बताएंगे। और 5 मिनट आपको जो है तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी के बारे में भी बता करके हम क्लास को समाप्त कर देंगे। तो जगन्नाथ दास बाबा जी जो हैं, सन 1764 में इनका प्राकट्य हुआ। इनके पूरे एग्जैक्ट डेट और समय और स्थान का पता किसी को भी नहीं है, अंदाजा है 1764 साल में वर्ष में इनका जन्म हुआ और 144 वर्ष तक ये इस धरा पर थे। इनकी आयु कितनी हो गई थी? 144 बरस तक ये पृथ्वी पर थे। और इनके जो प्रारंभिक जो गुरु थे उनका नाम था श्री रास बिहारी गोस्वामी, लेकिन उस बारे में ज़्यादा उल्लेख नहीं मिलता है। तो ये रास बिहारी जो हैं ये नित्यानंद प्रभु के वंशज थे, लेकिन उसके बाद जगन्नाथदास बाबा जी ब्रजमंडल आए। ये थे तो वहाँ बंगाल में, लेकिन वहाँ से एक समय में ब्रजमंडल आए और इनको यहाँ पर श्रीला मधुसूदन बाबा जी, मधुसूदन दास बाबा जी के संपर्क में आए। और मधुसूदन दास बाबा जी की इन्होंने जो है खूब सेवा करी और उनसे जो है दीक्षा भी ली, संन्यास दीक्षा जो है वो उनसे प्राप्त करी है। और जगन्नाथ दास बाबा जी को इनसे मिलकर के बड़ी संतुष्टि हुई। रूपानुग भक्ति के प्रचारक थे ये, और उन्होंने परमहंस वेश यानी संन्यास दीक्षा प्राप्त की। और ये राधा कुंड के पास सूर्या कुंड है जगह स्थान, 5 मील की दूरी पर, वहाँ पर कौन रहते थे, इनके गुरु जगन्नाथ दास बाबा जी के, कौन, मधुसूदन दास बाबा जी, ये वहाँ पर रहते थे, सिद्ध बाबा थे। तो मधुसूदन बाबा जी के विषय में थोड़ा सा आपको बता देते हैं, फिर आपको जगन्नाथ दास बाबा जी से इनका कनेक्शन पता लग जाएगा। थोड़ा उनके गुरु के बारे में भी बता देते हैं कि मधुसूदन दास बाबा जी कौन थे। मधुसूदन दास बाबा जी जब 12 वर्ष के थे और 12 वर्ष की आयु में इनके पास एक भक्त कोई आया था और इनको हरिनाम महामंत्र और 18 अक्षरों का कृष्ण नाम बता करके चला गया कि इसको जप किया करो, जब इनके गुरु 12 वर्ष के थे। अब ये उस मंत्र को जप करने लगे, हरिनाम महामंत्र और जो उन्होंने 18 अक्षरों का दिया था उसको जप करते रहे। लेकिन जब ये थोड़े बड़े हुए मधुसूदन महाराज, तो इनको अपने ऊपर बड़ी ग्लानि होने लगी। ये ग्लानि होने लगी कि मेरे को जिसने महामंत्र का ये नाम दिया, जिसने मेरे को ये मंत्र दिए, मेरे को उसके बारे में कुछ पता नहीं, वो कौन थे, कहाँ से आए, मुझको कुछ मालूम नहीं है, मैं उनकी कोई सेवा नहीं कर सकता, कुछ सेवा नहीं कर पाया। और बहुत ही दुखी रहते थे कि मेरे को अपने गुरु के बारे में कुछ पता नहीं, मेरे को कैसे मंत्र का जप करना है, क्या विधि है, मेरे को कुछ पता नहीं है। तो इतना शोक में रहते थे, और ये शोक करते करते वो ब्रजमंडल आ गए और कुछ समय तक वो काम्यावन में रहे। जगन्नाथ बाबा जी के गुरु महाराज की बात कर रहे हैं, अभी जगन्नाथ दास बाबा जी की बात नहीं बता रहे आपको, उनके गुरु की बात बता रहे हैं। काम्यावन में रहे और एक दिन वो इतने दुखी हो गए, उन्होंने गिरिराज की शिला अपने गले में बांधी और राधा कुंड में छलांग लगा दी। राधा कुंड में छलांग लगाने के बाद तुरंत राधा और श्याम सुंदर साक्षात प्रकट हुए वहां राधा कुंड पे, और उन्होंने अपने हाथों से इनको बाहर निकाल करके तट पे बिठाया, मधुसूदन दास बाबा जी महाराज को, और बिठा करके तला लीव्स लिखा है, तला लीव्स कौन सी लीव्स होती हैं, उसके ऊपर स्वयं श्री राधा श्याम सुंदर ने उनके गुरु का नाम, उनके वंशज और जप करने की विधि क्या है वो सब पत्र पे लिख करके उनको दिया और अप्रकट हो गए। ये हैं उनके गुरु महाराज जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के। तो उनके गुरु कौन थे, तो उनके गुरु जो हैं वो हैं श्री उद्धव दास, उद्धव दास जो कि रूपानुगा वैष्णव परिवार बलदेव विद्याभूषण से संबंधित थे, बलदेव विद्याभूषण से संबंधित थे परिवार से उनके गुरु, किनके, मधुसूदन दास बाबा जी महाराज के। तो बलदेव दास जो बाबा जगन्नाथ दास बाबा जी के गुरु कौन थे, मधुसूदन दास बाबा जी। तो अभी हम आपको ये थोड़ा बता दिया क्या कनेक्शन है, और अभी हम आगे चलते हैं। तो जगन्नाथ दास बाबा जी जो है ऐसे विरक्त पुरुष के, सिद्ध पुरुष के शिष्य थे जो हमारी भक्त वैष्णव परंपरा में आते हैं। तो जगन्नाथ दास बाबा जी का ये ऐसा उनका बना हुआ था प्रैक्टिस थी कि 6 महीने वो नवदीप मंडल में रहते थे और 6 महीने वो ब्रज मंडल में रहते थे, 6 महीने यहाँ 6 महीने वहाँ। और उनको सार्वभौम की उपाधि दी गई थी भक्ति विनोद ठाकुर जी के द्वारा, सार्वभौम का मतलब चीफ ऑफ ऑल वैष्णवास, है ना प्रधान, ब्रजमंडल नवदीप मंडल और पुरुषोत्तम से जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ दास बाबा जी को बहुत ही उनको सब प्रेम करते थे और बहुत उनसे जो है आसक्त थे। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने उनको ये दिया था। जब उनकी आयु 125 वर्ष की हो गई थी तो उनका शरीर कैसा हो गया था, अर्ध गोलाकार शरीर हो गया था और वो पलकें उनकी झुकी रहती थी और वो एक टोकरी में बैठ करके आया जाया करते थे और उनके जो सर्वेंट थे उनका नाम था बिहारी दास, बिहारी दास उनको लेकर के जाता था जहाँ कहीं संकेत। और उनकी पलकें कैसी होती थी, पलकें उनकी झुकी रहती थी जैसे कर्टेन पर्दे, पर्दे झुके रहते हैं तो दो सेवक जो है उनके पर्दों को उठाते थे तो वो जो है गिरिराज जी जो उनके गोवर्धन जो उनके ड्यूटी थे उनको वो तुलसी मंजरी अर्पण करते थे, फिर पलखें उनके नीचे आ जाती थी। और जब कहीं संकीर्तन होता था तो 125 वर्ष के बाबा जी जो है टोकरी में से छलांग मार के चार चार फुट ऊपर उछलने लगते थे। हरी वो तो ये बाबा जी के बारे में जो है, ऐसे बाबा जी थे। और जब भक्ति विनोद ठाकुर जी श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान को खोजने के लिए बाबा जी को लेकर के गए थे है ना, और योगपीठ का जब पता लगाया और जगन्नाथ दास बाबा जी ने कहा यही वो स्थान है, वहाँ भी उन्होंने जो है को छलांगे लगाई थी। तो एक बार क्या हुआ कि जब वो यहाँ वृंदावन में रह रहे थे और बाबा जी की बड़ी ख्याति थी, बड़ा नाम था, एक दिन इन्होंने एक भंगी को देखा, स्वीपर भंगी को, और उसको कहा अरे एक रोटी खिला दे, एक रोटी दे दे। तो पहले तो वो भंगी हिचकिचाया, भाई ये इतने बड़े बाबा जी मेरे से रोटी क्यों मांग रहे हैं, लेकिन उनका जिद करके उनसे एक रोटी ले ली और रोटी लेकर के वो रोटी खाने लगे तो सारे में बहुत ही तहलका मच गया और सब जगन्नाथ दास बाबा जी की आलोचना करने लगे कि इन्होंने क्या किया, एक भंगी के हाथ की रोटी खाई है। इस तरीके से जो है उनके जो सेवक थे बिहारी, बिहारी भी इनसे जो है नाप्रसन्न हो गए, नाखुश हो गए कि आपने ऐसा कार्य क्यों किया, मेरे को कहते मैं आपको जैसा रोटी कहते बना करके देता, आपने एक भंगी से रोटी लेकर के खा ली। तब जगन्नाथ दास बाबा जी क्या कहते हैं, बोले देखो मैं तो ज़्यादा मुझको मालूम नहीं है, आप लोग तो बहुत सब ज्ञानी हो, आप लोग सब ज्ञानी हो, लेकिन वृंदावन की रज की महिमा को शायद आप जानते नहीं। वृंदावन की रज की महिमा क्या है, इसमें इतनी शक्ति है कि स्वयं ब्रह्मा जी ब्रज रज का एक कण बनने की इच्छा करते हैं कि मेरे को ब्रज का एक कण बना दो। और इस भंगी से अधिक इस ब्रज रज को कौन किसके मुंह में जाती है तुम बताओ, ये जो सारा दिन झाड़ू लगाता है इससे ज्यादा कौन सी ब्रज रज किसके मन शरीर में जाती है और इसकी मैंने रोटी लेकर के क्या अपराध किया। ये भाव था जगन्नाथ दास जी बाबा का। और नवदीप धाम में भी जब वो रहते थे तो नवदीप धाम में जो है वहाँ अगर उनके थाली में से कोई कुत्ता भी आकर के रोटी ले जाता था तो ये मना नहीं करते थे, उसको अशुद्ध नहीं मानते थे, उसमें से खाते थे। बिहारी दास मना करता था कि ये क्या कर रहे हो आप, कहते नहीं ये धामवासी है, ये कुत्ता भी धामवासी है। ऐसा भाव था। एक दफा नवदीप में एक परिवार आया था और उन्होंने जब सुना था ये सिद्ध बाबा हैं जगन्नाथ दास बाबा जी, तो उन्होंने बाबा जी से कहा कि आप कोई अपना चमत्कार दिखाओ। तो बाबा जी को तो ऐसा चमत्कार दिखाने की कोई आवश्यकता थी नहीं, लेकिन उन्होंने कहा इनका मेरे प्रति कोई मन में अपराध लेकर के ना चले जाए मेरे प्रति, तो उन्होंने एक लाठी से तीन दफा जोर से हट 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 करके डंडा मारा। तो वो परिवार जो आया था उन्होंने कहा शायद इनको क्रोध आ गया, हमारे को डरा रहे हैं। तो उन्होंने कहा आपको नहीं डरा रहा, राधा कुंड में एक बकरी जो है एक वो तुलसी के पौधे को खा रही है, उसको मैंने जरा डंडा मारा है। अब वो चकरा गए, उन्होंने कहा ये क्या बात है। और उस वक्त उन्होंने एक टेलीग्राम लिख करके राधा कुंड में पूछवाया कि भाई क्या यहाँ पर तुलसी के पौधे को बकरी ने खाया था, तो कन्फर्मेशन आई कि हाँ खाया था और वो बकरी जो है वो खा गई। तो इस तरीके से जगन्नाथ दास बाबा जी जो 144 वर्ष तक यहाँ रहे पृथ्वी पर, उनका आज तिरुभाव दिवस है। तो अभी समय तो हमारे पास नहीं है, दो मिनट कहें तो हिज होलीनेस तमाल कृष्ण जो है महाराज जी के बारे में मैं आपको कुछ बता देता हूँ। तो तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जब शिला प्रभुपाद के, मतलब आप ये समझ लीजिए कि एकदम राइट हैंड थे, एकदम राइट हैंड है ना, तो इनकी इनका जो जन्म है वो हुआ है 18 जून 1946 को, और प्रभुपाद से मिले हैं सन 1968 में, यानी कितने वर्ष की उम्र में, 22 वर्ष की, 22 वर्ष की उम्र में प्रभुपाद से इनका भेंट होती है अमेरिका में। और उसके बाद में इस्कॉन के सन्यासी गुरु आचार्य और इस्कॉन के जीवीसी, प्रभुपाद ने इनको तुरंत बहुत सारी सेवाएं दे दी, और इनको जो है मंदिर का प्रधान भी वहां बनाया, और इसके अलावा जो है इन्होंने 4 साल तक राधा दामोदर ट्रेवलिंग पार्टी चलाई 1975 से लेके 1979, इनको लीडर बना दिया था प्रभुपाद ने, राधा दामोदर संकीर्तन ट्रेवलिंग पार्टी। ट्रेवलिंग पार्टी क्या करती थी वो, उसमें 100 से अधिक भक्त होते थे बसों में, और वो प्रचार करते थे, बुक्स का डिस्ट्रीब्यूशन करते थे और भक्त बनाते थे। तो ऐसा बताया जाता है उस बस में 2 दरवाजे होते थे, एक पिछला दरवाजा और एक अगला दरवाजा। तो पिछले दरवाजे से वो किसी को अंदर ले लेते थे, किसी भी व्यक्ति को, अभक्त को, और उसको बस के अंदर प्रीचिंग, इतनी जोरदार प्रीचिंग होती थी, जब वो बस से बाहर निकलता था अगले दरवाजे से वो हेड शेव होता था और कंठी माला गले में और धोती कुर्ता पहने हुए, बस के पिछले दरवाजे से हिप्पी घुसता था और बाहर जो है वैष्णव बन के अगले दरवाजे से निकलता था, इतनी स्ट्रांग प्रीचिंग हिज होलीनेस तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के द्वारा होती थी। और तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को अपने जाने का एहसास हो गया था, उनका शरीर छूटा है 15 मार्च 2002 को, जब वो 55-56 बरस के थे। तो मायापुर की जमीन लेने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। जब वो जीबीसी की मीटिंग करके अगले दिन सुबह जा रहे थे अमेरिका के लिए, तो 3-4 दिन पहले हिज होलीनेस भक्ति चारू महाराज उनके कमरे में थे। भक्ति चारू महाराज और हिज होलीनेस तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ये बैठे हुए थे। तो ये भक्ति चारू स्वामी महाराज अपने लेक्चर में बताते हैं, कहते हैं कि मेरे को तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने कहा कि मेरे जो शिष्य हैं ना कलकत्ता में, उनके बहुत बंगाली स्टूडेंट्स थे जो उनके शिष्य बन गए थे तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के, तो उन्होंने कहा महाराज जी से, भक्ति चारू महाराज जी से कहा कि आप इनको अपने बच्चों के रूप में स्वीकार कर लो, ये आपके बच्चे हैं। तो भक्ति चारू महाराज जी ने कहा कि मैं इनका पिता कैसे हो सकता हूँ, आप इनके पिता हैं, आपसे इन्होंने दीक्षा ली है, मैं तो इनका अंकल हो सकता हूँ। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप इनके पिता हैं, आप इनकी देखभाल कीजिएगा। ये 3-4 दिन पहले की बात है उनके शरीर छूटने से। और जिस दिन वो जा रहे थे सवेरे मायापुर से कलकत्ता जा रहे थे, रास्ते में उनका दुर्घटना होती है, तो उससे पहले रात को उन्होंने अपने सेवक को विशंबर को कहा कि विशंबर आई एम लीविंग, मैं जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा यस यू आर लीविंग टुमारो मॉर्निंग, यू आर गोइंग USA। उन्होंने कहा नो नो आई एम लीविंग। तो इस तरीके से उन्होंने 2-3 ये मैसेज दिए। और जब उनका शरीर छूटा तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये बताती है कि उनका शरीर दुर्घटना से पहले छूट गया था। दुर्घटना में नहीं छूटा, दुर्घटना होने से पहले उनका शरीर शांत हो गया था। तो इनकी बहुत सारे है मायापुर का योगदान। प्रभुपाद ने जहां जहां इनको जैसे जैसे भेजा, इन्होंने पूरे एकदम टोटली सरेंडर्ड सोल, टोटली 100% सरेंडर्ड सोल। तो हिज होलीनेस तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की, शिला प्रभुपाद की, श्रीमद भागवतम महापुराण की, दाई गौर प्रेमानंदी।